ये BBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में खसूसी प्रोग्राम नीम रोज। ये प्रोग्राम आप हर रोज इसी वक्त शॉर्ट वेव पर 19 मीटर बैंड पर 15,310 किलोहर्ट्ज़ और 22 मीटर बैंड पर 13,650 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकेंगे। ये प्रोग्राम रेडियो के अलावा हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी नशर किया जाता है।
सनीचर 14 सितंबर जम्मू और कश्मीर की खबरों के खसूसी प्रोग्राम नीम रोज के साथ मैं हूं काशान अकमल। इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में सिक्योरिटी लॉकडाउन को 40 दिन गुजर गए। सऊदी अरब से एक कश्मीरी का पैगाम।
एक महीने 6-7 दिन हो गए, मेरा कोई कंटेक्ट घर पे नहीं हो रहा, फोन नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे पता नहीं घर वाले कैसे हैं।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद
नीम रोज में साद सुहेल से खबरें सुनिए। तालिबान की एक मुजाकराती टीम मॉस्को में मौजूद है। रूसी मीडिया के मुताबिक तालिबान के अहलकार सुहेल शाहीन ने अफगानिस्तान के लिए रूस के खसूसी एलची जमीर काबुलोव से मुलाकात की और हालिया अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त पर सामने आई है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते तालिबान के साथ मुज़ाकरात को मनसूख करने का ऐलान किया था। उनका यह ऐलान तालिबान की जानिब से किए गए हमले के बाद सामने आया जिसमें एक अमरीकी फौजी समेत 12 अफराद हलाक हुए थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने रूस के खबर रसां इदारे RT को एक इंटरव्यू में कहा है कि मसला कश्मीर काबू से बाहर हो सकता है और लोगों को बदतरीन नतायज के लिए तैयार होना चाहिए और इस सूरत में बदतरीन नतीजा दो जौहरी ताकतों का आमने सामने आना है। आलमी बरादरी के रद्द अमल के हवाले से इमरान खान का कहना था,
Here is a government which has broken every law, every humanitarian law.
हमारे सामने एक ऐसी हुकूमत है जिसने तमाम इंसानी हकूक के कानून की खिलाफ वर्जी की है और बदकिस्मती से अब तक आलमी बरादरी का रद्द अमल ऐसा नहीं रहा जिसकी हमें तवक्को थी।
कनाडा के खुफिया इदारे के एक सीनियर एहलकार पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर हसास मालूमात गैर मुल्की इदारे या दहशतगर्द तंजीम को फराहम करने के इल्ज़ाम में मुकदमा कायम किया गया है। कैमरून ऑटिस नामी सिविलियन को ओटावा की एक अदालत में गुज़िश्ता रोज पेश किया गया था। हुक्काम का कहना था कि ऑटिस 2015 से रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस में मुलाजमत कर रहे थे और उनकी रसाई कैनेडा और बैरून मुल्क की कानून नाफिज करने वाले इदारों की हसास मालूमात तक थी। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने समंदरी तूफान डोरियान से आने वाली तबाही का जायजा लेने के लिए बहामास का दौरा किया है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए नीम रोज के नाम से खसूसी नशरियात आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत ख़त्म करने के बाद से मामूलात ज़िंदगी वहां मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सके हैं। गुज़िश्ता रोज़ नमाज जुमा के बाद किसी भी किस्म के एहतजाजी मुजाहरे को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। मसाजिद में सिर्फ आसपास के लोगों को ही जुमा की नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई थी। तफसीलात जानिए श्रीनगर से हमारे साथी माजिद जहांगीर की इस रिपोर्ट में।
हम इस समय भारत प्रशासित कश्मीर के लाल चौक में हैं और यहाँ रोज़ाना की तरह 5 अगस्त के बाद आज भी दुकानें बंद हैं। दाएं बाएं हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं। ट्रैफिक की आवाजाही भी बहुत कम है कल के मुकाबले में। कल काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट ट्रैफिक हमने सड़कों पर देखा श्रीनगर के हर इलाके में, और आज हमने श्रीनगर के डाउनटाउन का दौरा किया और उस इलाके में भी गए नौहटा इलाके में जहां इतिहासिक जामा मस्जिद है, और वहां आज 5 अगस्त के बाद प्रशासन ने नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि दरगाह हज़रत बल हम गए, वहां आज इस जुम्मा को भी नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई और वहां हमने कई लोगों से बात की और उनका ये कहना था कि यहां सिर्फ लोकल्स को यानी स्थानीय लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई।
तकरीबन हम तो जुम्मा को पढ़ते हैं नमाज, लेकिन जो यहाँ के लोकल्स है सिर्फ उनको अलाउ किया जाता है यहाँ नमाज के लिए। बाकी जो दूर दूर से आ रहे थे यहाँ लोग, बड़ा इज्तिमा हो रहा था, लेकिन वो इज्तिमा तो पिछले 6 जुमों से नहीं हो रहा है।
तो यहाँ इर्द गिर्द आज भी करबुज थे कुछ ऐसे?
करबुज तो है, आप देख सकते हैं पूरा तार लगा हुआ है हर तरफ से जहाँ से लोग आ रहे हैं।
मेरा नाम अली मोहम्मद।
तो कहाँ नमाज पढ़ी आज आप?
हाँ, मैं यहीं पढ़ी।
तो 5 अगस्त के बाद क्या पहली बार आपने यहाँ नमाज पढ़ी?
नहीं, मैं हर जुमा पढ़ता हूँ। हाँ मगर लोकल खाली लोकल बस बाहर का नहीं कोई नहीं
दूर से
कोई छोड़ता ही नहीं
तो क्या वजह है क्यों ये छोड़ रहे हैं दूर के लोगों से
तो कौन तरीके से ये है कि मतलब बंसे हैं मतलब उस वजह से दिक्कतें आ रही है
मतलब
खुले मतलब यहाँ पे तो मतलब गाड़ी को भी नहीं छोड़ते स्कूटर को भी नहीं छोड़ते आधे रास्ते से पैदल पैदल आते हैं
यही जाने वो तो यही फौज जाने की वो जो एजेंसीज है वही जाने हमें क्या पता है हमें तो बस पढ़ने नहीं देते दूर से लोगों को ना आने नहीं देते हैं बस
डाउन टाउन के जो दूसरे इलाकों का जो हमने दौरा किया दुकानें बंद थी ट्रैफिक की मूवमेंट भी बहुत कम थी और घाटी के दूसरे इलाकों में क्या कुछ हुआ जुम्मा की नमाज के बाद जो कम्युनिकेशन का मसला है उस वजह से हम घाटी के हर इलाके की सूचना हम तक नहीं पहुँच रही है जिसकी हम तस्दीक कर सके इसी तरह से आश्री नगर में भी कार ट्रैफिक का जो मूवमेंट था वो बहुत कम था कल के मुकाबले में क्योंकि फ्राइडे हमेशा ही कश्मीर में बहुत ही सेंसिटिव दिन माना जाता है जिस दिन नमाज के बाद जुम्मा नमाज के बाद प्रदर्शनों का खतरा रहता है और प्रशासन इस हवाले से कोई भी कमी छोड़ती नहीं है सुरक्षा बलों को तैनात करती है जगह जगह और प्रदर्शनों को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश प्रशासन की तरफ से होती है माजिद जहांगीर बीबीसी श्रीनगर
और अब वक्त हुआ है उन ऑडियो मैसेजेस का जो दुनिया भर से कश्मीरियों ने इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में मकीम अपने प्यारों के लिए बीबीसी उर्दू के फेसबुक पेज पर भेजे हैं आइए सुनते हैं
मैं डॉक्टर अलीजान लद्दाख जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट ले से बोल रहा हूँ मेरा मैसेज मेरे अब्बू और तमाम घर वालों और अपने ससुराल वालों से ये है कि मैं यहाँ लद्दाख में बखैर वाफियत हूँ मेरे साथ मेरे दो दोस्त रफाकत जिलानी मजमो काजीगुंड से और गुलजवान मलिक कुपवाड़ा से हैं ये दोनों दोस्त भी बखैर वाफियत अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं
मैं आबिद मसूदी मुतदा इमारात से बात कर रहा हूँ और बेसिकली मैं श्रीनगर से ताल्लुक रखता हूँ अभी 40 दिन के ऊपर हो गए घर वालों से कोई भी रابطہ नहीं हो सका मगर मुझे उम्मीद है कि उधर सब खैर से होंगे और मुझे गवर्नमेंट से अपील है कि जो कम्युनिकेशन का निज़ाम जो है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए और वादी में जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसको भी जल्द से जल्द उठाया जाए
मैं तारा बात कर रही हूँ पाकिस्तान से मेरा मैसेज भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके खानमू में अपने दोस्त अतर के लिए है विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा मैं अल्लाह ताला से आपकी खैर आफियत के लिए दुआ को हूँ
मेरा नाम मोहम्मद रफीक मैं सऊदी अरब मदीना डिस्ट्रिक्ट पॉइंट तहसील मंडी और लोरन बेलाबाला का रहने वाला हूँ मुझे आज 1 महीने 6-7 दिन हो गए मेरा कोई कनेक्ट घर पे नहीं हो रहा फ़ोन नहीं हो रहा मैं बिल्कुल सेफ हूँ मुझे पता नहीं घर वाले कैसे हैं कोई पता नहीं मैं मोदी से अपील करना चाहता हूँ इंटरनेट और फ़ोन जल्दी से जल्दी चालू करें ताकि हम घर बात कर सकें
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है
जब हालात कशीदा हों और बाखबर रहने का कोई जरिया ना हो तो सुना कीजिए कश्मीर के बारे में बीबीसी उर्दू सर्विस का खसूसी प्रोग्राम नीम रोज रेडियो के अलावा हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी मुस्तनद खबरों के लिए जुड़े रहिए बीबीसी उर्दू सर्विस के साथ
जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए नीम रोज के नाम से खसूसी नशरियात आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सदर मकाम मुजफ्फराबाद में मुनक्किद होने वाले अवामी इज्तमा में गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खिताब करते हुए कहा है कि कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता तो उसका असर पूरी दुनिया पर होगा तफसीलात के साथ मुजफ्फराबाद से एम ए जराल
वादी कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए एक जलसा आम से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहराना अंदाज अपनाते हुए कहा कि उन्हें आलमी दुनिया के सामने कश्मीर का मामला उठाने दिया जाए जिसके बाद वो नौजवानों को बताएंगे कि LOC का रुख कब करना है
मुझे आपके जज्बे का पता है मुझे पता है कि कई आप में से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं नौजवानों मुझे पता है कि आप में जज्बा और जमीन है लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा
इमरान खान की जानिब से यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में खुद मुख्तार कश्मीर की हामी तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एक धड़े के अलावा عام لوگوں نے لائن آف کنٹرول کے تین مختلف سیکٹرز کی جانب مارچ کیا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ انڈیا اپنے زیر انتظام کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے اس سے انڈیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے کشمیر میں اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اب مسلمانوں کے لیے بھی انڈیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔
اس لیے میں آج بھی عالمی کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ یہ ہندوستان کے ہٹلر کو روکو، یہ وقت کہ اس کو بتاؤ کہ کشمیر پہ سے کرفیو اٹھائے اور کشمیریوں کو ان کا حق دے جو یونائٹڈ نیشنز نے 1948 میں ان کو دیا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ وہ اگلے ہفتے نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جا رہے ہیں جہاں وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کشمیریوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ یکجہتی کشمیر کے جلسے کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں جہاں پاکستان سے الحاق کی بات کرنے والی تنظیموں کے کارکنان شامل تھے، وہیں پر خود مختار کشمیر کے حامی بھی موجود تھے۔ ایم اے جرال، بی بی سی، مظفرآباد۔
وزیراعظم پاکستان نے گزشتہ روز اپنے خطاب میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کے آئندہ کے لائحہ عمل کی بھی وضاحت کی ہے۔ کیا ان کے اس خطاب پر انڈیا کی حکومت کا رد عمل آیا ہے؟ یہی سوال میں نے پوچھا دلی میں بی بی سی کے نامہ نگار شکیل اختر سے۔
داشان، دیکھیے، حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر تو کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، کیونکہ حکومت کی پالیسی یہ رہی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے جو بھی ریئیکشن ہو یا کوئی بیان آئے تو اس پر انڈیا کا تھوڑا سا لو پروفائل رکھنے کی ایک پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اور دوسری طرف لیکن اخبارات نے جو وزیراعظم عمران خان کی جو تقریر ہے اس کے الگ الگ پہلوؤں کو الگ الگ اخباروں نے یہاں پر، کچھ نے اپنے صفحہ اول پہ شائع کیا ہے، کچھ نے پرومیننٹلی دوسری جگہوں پہ شائع کیا ہے، لیکن اس کا کوریج کافی الگ الگ اخباروں میں اچھی طرح سے آیا ہے، لیکن سرکاری طور پر اس پر کوئی رد عمل نہیں ہوا ہے۔
آپ نے ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بات کی ہے، تو کیا آپ ہمارے سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ انڈین میڈیا وزیراعظم پاکستان کے کل کا جو ان کا بیان ہے گزشتہ روز کا، اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟
دیکھیں، یہاں پر ایک محتاط طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ اخبارات نے مثلا آج جو خبریں دی ہیں اس میں کہیں کہیں پر اس کا ذکر ہے کہ عمران خان نے جو کہا ہے کہ انڈیا نے کشمیر کے حوالے سے جو پالیسی اختیار کر رکھی ہے اس سے وہ دنیا کے مسلمان ناراض ہوں گے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، وہ انہیں انتہا پسندی کی طرف، اس طرح کے اقدامات سے مسلمز دنیا کے جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف راغب ہوں گے۔ اس طرح کے بیانات کو الگ الگ اخباروں نے شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کئی اخباروں نے دیا ہے کہ کس طرح سے عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ لیکن بنیادی طور پر جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کوریج سبھی نے کیا ہے، زیادہ تر اخبارات میں ہے۔
اچھا شکیل صاحب، یہ بھی بتائیے کہ سری نگر سے ہمارے ساتھی ماجد جہانگیر نے گزشتہ روز جو جمعے کا دن تھا اس کی صورتحال سے تو ہمیں آگاہ کیا ہے، لیکن آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کل شام سے اب تک یا آج کے دن کے حوالے سے کوئی اہم اطلاع آپ کے پاس ہو؟
جموں خطے سے خبر کل آئی تھی کہ وہاں پر کچھ ملیٹنٹس نے ایک پی ڈی پی کے ایک لیڈر کے گھر پر ان کو یرغمال بنا لیا تھا، پوری فیملی کو، اور اس کے بعد صبح میں ان سے جو اے کے 47 رائفل جو کہ ایک پرسنل سیکیورٹی گارڈ کے پاس تھی اس سے چھین کر لے کر چلے گئے۔ کشتواڑ قصبے میں جو ہے کل دن بھر کرفیو لگا رہا اور ان ملیٹنٹ کی تلاش جاری تھی۔ یہ بات اہم ہے کہ اس سے ایک دن پہلے ہی ایک ٹرک پولیس نے گرفت میں لیا تھا جس میں کوئی 5 AK-56 اور AK-47 رائفلیں برامد ہوئی تھیں جو پولیس کے دعوے کے مطابق جیش کے لیے، جو ملیٹنٹس ہیں ان کے لیے جا رہی تھیں۔
دلی میں ہمارے ساتھی شکیل اختر کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس کے ساتھ ہی جموں کشمیر کی خبروں کے بارے میں نیم روز کی خصوصی نشریات کا وقت ختم ہوا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ۔
امریکہ میں کانگریس کی رکن راشدہ طلیب نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینیت حیثیت ختم ہونے سمیت انڈین حکومت کی جانب سے نافذ کرفیو کی مذمت کی ہے۔ زمبابوے کے سابق صدر رابرٹ مگابے کی ریاستی سطح پر آخری رسومات آج دارالحکومت حرارے میں ادا کی جائیں گی۔ ایمیزون کے جنگلات میں لگی آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا، تاہم امریکہ اور برازیل نے مشترکہ طور پر اس علاقے میں ترقی کو فروغ دینے کے لیے دیگر منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کے ریاستی میڈیا کے مطابق ملک کی مشرق میں واقع دو تیل کے کارخانوں پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے بریگزٹ پر ریفرینڈم کرانے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے اور موجودہ رہنما بورس جانسن کی پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔